الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو اس کلاس کے اندر ہم سورہ انعام کی تفسیر پڑھتے ہیں، معرفت قرآن کی جلد نمبر 3 میں سے، اور جو آیات ہم نے پچھلی کلاس میں شروع کر لی تھیں، آیات نمبر 68 سے لے کر کے 73 تک، ان کا ہم نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہوا تھا، اور 69th بلکہ 70th آیت کا، یعنی 17th آیت کا ہم نے کچھ حصہ پڑھ لیا تھا. تو جیسے کہ پچھلی کئی آیات سے چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات کے اندر براہ راست مخاطب کر کے کچھ احکامات بھی فرما رہے ہیں، اور وہ احکامات جو ہوتے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، یہ بات غلط ہے، تو جو بات صحیح ہے وہ آپ کیجئے، وہ آپ لوگوں کو بتائیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے واسطے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی تعلیم کے لیے بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی واضح ہے، اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ جب تعلیم ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تعلیم کے ساتھ ہی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. فرق کیا ہے تعلیم اور تربیت میں؟ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے؟ نہیں، ایک ہی چیز کا تو یہ نام نہیں ہے، لیکن یہ دونوں آپس ایک دوسرے سے جدا بھی نہیں ہے، یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں. تعلیم میں صحیح اور غلط کے درمیان فرق بتلایا جا رہا ہوتا ہے، تعلیم میں ماضی کے حالات بتلائے جا رہے ہوتے ہیں، تعلیم میں کسی کام کو کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہوتا ہے. یہ علم دینا تعلیم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، علم دینا تعلیم کہلاتی ہے. ماضی کے بارے میں علم دینا، مستقبل کے بارے میں علم دینا، حال کے بارے میں علم دینا، فیکٹس اینڈ فگرز کے بارے میں علم دینا، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط کے بارے میں علم دینا، یہ تعلیم کہلاتا ہے. تو پھر تربیت کس چیز کا نام ہے؟ تربیت ہوتا ہے کہ جب جو طالب علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ تعلیم پاتا ہے، تو اب وہ اس تعلیم کے اوپر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، تو اس بات کو دیکھنا کہ کیا وہ سن بھی رہا ہے کہ نہیں سن رہا. اگر نہیں سن رہا تو اس کو تنبیہ کرنا کہ غور سے سنو، ٹھیک ہے، توجہ سے تعلیم حاصل کرو، صحیح ہے. اور اگر وہ پھر بھی توجہ نہ دے تو اس کو کچھ سزا کی دھمکی دو، سزا سے ڈراؤ اس کو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد پھر اس کو عمل کرنا چاہیے اس تعلیم کے اوپر. اگر وہ عمل کے اندر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو وہاں پہ تنبیہ کرنا، یا وہاں پہ اس کو اصلاح کرنا کہ بھئی عمل ایسے نہیں کرنا تھا بلکہ ایسے کرنا ہے، تم تو غلط کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر عمل کر ہی نہیں رہا تو اس کو موٹیویٹ کرنا عمل کرنے کے اوپر نا،
ठीक है, कि भाई अमल करो तुम्हें ये फायदा होगा ये फायदा होगा, तो ये मोटिवेशन जो दे रहे होते हैं, और ये दो जो गलती की इसलाह कर रहे होते हैं अमल के दौरान, जो गलती की इसलाह हो रही होती है ना, कोई भी काम कर, चाहे इल्म हासिल करने का काम, तो उसमें भी कोई गलती कर रहा है, सही से इल्म हासिल नहीं कर रहा, तो उसकी इसलाह, जब अमल करने का मरहला आया तो उसके अंदर अगर कोई गलती कर रहा है तो उसकी इसलाह करना, ये सारा का सारा तरबियत कहलाता है, राइट? ये तरबियत कहलाता है, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, ये अलग अलग चीजें नहीं है। जहां तालीम होगी वहां तरबियत होना भी लाजमी है, ठीक है? और तरबियत के साथ साथ तालीम भी चलनी लाजमी है, जरूरी है, वो होनी चाहिए, ठीक है? तरबियत के साथ साथ तालीम भी साथ साथ चलते रहना चाहिए, तालीम। बहरहाल, तो अल्लाह ताला जो है वो अपने हबीब अलैहिस्सलाम की तालीम भी फरमा रहे हैं और तरबियत भी फरमा रहे हैं, और आप सोचों के बाद से हम सब की भी। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं कि जब आप देखें ऐसे लोगों को जो कि हमारी आयतों में झगड़ते हैं, मीन मीख निकालते हैं, और जो है वो अपनी वही कल जो बात हो रही थी, अगर आप में से किसी ने कल का बयान सुना होगा, तो उसमें यही बात हो रही थी, अपने गुमान के मुताबिक बातें करना शुरू कर देते हैं, कोई दलील नहीं होती इनकी, उनके पास कोई इल्म नहीं होता उनके पास, अपनी तरफ से अटकल पिच्चू करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? तो अगर आप ऐसे लोगों को देखें ना, तो आप उनसे एराज करें, आप उनको अवॉइड करें, ठीक है? इसका हिस्सा मत बन जाए, आप भी इसमें पुल्ड इन नहीं हो जाए, बल्कि आप अपने आप को उनसे अलग करें। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरिही, हत्ता के वो किसी दूसरे बात के अंदर मशगूल हो जाएं। व इम्मा यनसियन्नक शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्र मअल क़ौमिल ज़ालिमीन, और अगर आपको भुला दे शैतान, ठीक है, कि ये गलती हो जाए उस मौके पर, क्योंकि आप जो है वो सिचुएशन के अंदर अगर इंसान फंस जाता है तो उसके जहन से फिर कुछ बातें निकल जाती हैं, तो अगर आप भूल जाए, ठीक है, तो जब याद आ जाए ना, तो उसके बाद फिर वहां से उठ जाए, ठीक है? जब गलती का एहसास हो जाए उसके बाद वहां से उठ जाए, ठीक है? वो ऐसा नहीं है कि बस एक गलती हो गई तो बस अब आप तो आगे भी गलती ही करनी है, क्योंकि गलती हो गई, आई लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी, तो आगे तो मैंने गलती ही करनी है। नहीं भाई, जब याद आ जाए तो फिर उस गलती से तौबा कर लो और अपने अमल को चेंज कर लो, ठीक है? फला तक़ुद बाद ज़िक्र, तो फिर याद आने के बाद मत बैठे रहिए वहां पर, माल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों की कौम के साथ। ये ज़ालिम कौन है जो कि आयात के अंदर अपनी तरफ से बहस करते हैं, वो ज़ालिम है, ठीक है? वमा अलल लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, गुनाहों से अल्लाह की नाफरमानी से बचने की कोशिश करते रहते हैं, उनके ऊपर उन लोगों का हिसाब नहीं है, ठीक है, जो के जुल्म करते हैं, तो उनका गुनाह जो है वो मुत्तकी लोगों के सर पर नहीं आएगा बिल्कुल भी, मिन शैयन, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वलाकिन दिखरा, लेकिन मुत्तकियों के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? याद दहानी कराने की जिम्मेदारी है, जिक्रा, ठीक है, याद दहानी कराने की जिम्मेदारी है, मुत्तकी यानी नेक परहेजगार लोगों के ऊपर याद दहानी कराना, ये उनका काम करने का है, ये उनका करने का काम है, ठीक है? लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो जालिम लोग जो हैं वो भी मुत्तकी बन जाएं, वो भी डरने वाले बन जाएं, ठीक है? ताकि से मुराद यहाँ पर था कि उम्मीद है कि वो जालिम लोग भी मुत्तकी बन जाएंगे, ठीक है? यानी अल्लाह ताला आपके इस याद दहानी को सबब बना करके अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत अता फरमा देगा, गुनाहगारों को हिदायत अता फरमा देगा। इस वजह से आप याद दहानी कराते रहिए, याद दहानी कराते रहिए, इससे मत चौंकिए, इससे मत चूकिए, ठीक है? वदरिल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लअबन वलहवन, और तर्क कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बना के रखा हुआ है, दीन को खेल तमाशा बना के रखा हुआ है, यानी अपनी मन मर्जी। खेल तमाशे में क्या होता है? हंसी मजाक चल रहा होता है, हल्ला गुल्ला चल रहा होता है, एंटरटेनमेंट चल रही होती है, और जो है वो जिसने खेल बनाया उसके उसूलों को फॉलो करके खेल खेला जा रहा होता है, ठीक है। तो दीन जो है ये कोई खेल तमाशा तो नहीं है, दीन तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ना। तो अल्लाह के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक दीन पे चलना होगा और दीन को सीखना होगा, फिर दीन पे चलना होगा अल्लाह के बनाए हुए तरीके के मुताबिक ना। तो खेल तमाशा क्या होता है कि आम इंसानों के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक जो है वो कोई आप गेम खेल रहे होते हैं। तो दीन जो है ये इंसानों का बनाया हुआ कोई बोर्ड गेम नहीं है, जैसे कैरम होता है ना, कैरम लूडो होता है, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, जालिम से मुराद काफिर है या गुनाहगार, दोनों मुराद हैं। गुनाहगार मुसलमान भी मुराद हो सकता है, जो कि हमारे लिए अप्लाई होता है ये, और जो उस जमाने में नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो गुनाहगार मुसलमान नहीं होते थे ना, नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो या मुसलमान होते थे या काफिर होते थे, उस जमाने में काफिर मुराद थे, इस जमाने में गुनाहगार मुसलमान भी इसके अंदर मुराद है, ठीक है। अच्छा, तो लाइब और लहव जो है तो ये क्या है, ये वो वाले गेम्स होते हैं जैसे आज कह रहा था लूडो का गेम होता है या कैरम का गेम होता है, ठीक है। तो ये लूडो और कैरम किसने बनाए, ये वही के जरिए से तो नहीं बने, नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं आकर के सिखाया कि भाई लूडो इस तरह से खेला करो, राइट, या कैरम इस तरीके से खेला करो, ठीक है। तो जिस इंसान ने लूडो बनाया तो उसने लूडो को के उसूल भी बताए कि भाई ऐसे आपने जो है वो फेंकना है, फिर ऐसे जो है वो गुटी को आगे चलाना है, फिर ये गुटी इधर चली जाएगी तो वो जीत जाएगा, वो उधर चली जाएगी तो वो हार जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इंसानों के बनाए हुए बोर्ड गेम्स कहलाते हैं, इनको बोर्ड गेम कहते हैं, बोर्ड के ऊपर बने होते हैं ना। तो ये दुनिया भी एक बोर्ड गेम ही है, ये दुनिया की जो जिंदगी है ना, खलकल मौत वल हयाता, ये भी एक बोर्ड गेम है, ठीक है। इसके अंदर भी यही है, कामयाबी नाकामी कुछ उसूल हैं, कुछ कवायद हैं, लेकिन फर्क क्या है कैरम और लूडो और जिंदगी के अंदर क्या फर्क है, कि जिंदगी का बोर्ड गेम अल्लाह का बनाया हुआ है, इसके उसूल और कवायद अल्लाह के डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। और इसकी कामयाबी नाकामी भी अल्लाह ताला बताते हैं कि कैसे कामयाबी कैसे नाकामी, ठीक है। जबकि जो जो खेल तमाशे जो दुनिया के अंदर होते हैं ये इंसानों के बनाए हुए हैं या ज्यादा से ज्यादा जिन्नों के बनाए हुए होंगे, ठीक है। तो अब जब हम दीन को इंसानों के बनाए हुए तरीके के मुताबिक लेके चल रहे होते हैं, यानी अपने अकल के मुताबिक, अपने गुमान के मुताबिक, अपनी अजम्पशंस के मुताबिक, ठीक है, अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नहीं, जो कि अल्लाह ने अपने नबियों के वास्ते से हमें बताया और नबियों की बात को हमारे उलमा और मशाइख हक ने हमें समझाया, ठीक है। तो इस वास्ते से जो इल्म हासिल हुआ दुनिया के बोर्ड गेम को खेलने का, हम उसके बजाय अपने जुहला के तरीके के ऊपर दुनिया के बोर्ड गेम को खेलना शुरू कर दें तो इसको क्या कहते हैं, खेल तमाशा, ठीक है। अपने गुमान के मुताबिक यार यही हलाल होगा यही हराम होगा, यही जिंदगी का मकसद है वही जिंदगी का मकसद है, भाई क्या दलील है आपके पास जो आप ये बातें करते फिर रहे हैं, अपनी तरफ से जो है ना वो लगाए चले जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये दीन को खेल तमाशा बनाना है, ये क्या है, ये दीन को खेल तमाशा बनाना है। उसी का अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे जिक्र फरमा रहे हैं कि आप उन लोगों को छोड़ दीजिए जो दीन को खेल तमाशा बना के रखे, यानी अपने गुमान के मुताबिक दीन को जो है ना वो के बारे में कमेंट्स देते रहते हैं कि दीन ये कहता है, दीन वो कहता है, दीन में ऐसा होना चाहिए, दीन का ये मकसद है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है कि अगर हम ये हरकत कर रहे हैं अपने बगैर इल्म के दीन के बारे में चीजें बोलते चले जा रहे हैं, ये कोई छोटा गुना नहीं है, ये इतना बड़ा गुना है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला अपने हबीब को फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ, और आगे उन लोगों को मजीद डिफाइन मजीद डिस्क्राइब किया, वगरतहुमुल हयातुद दुनिया, ठीक है। और उनका हाल क्या होता है, ये वाव जो है वो आतिफा भी हो सकता है, भी वाव हो सकता है, हालिया भी हो, उनका हाल ये है जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ, उनका हाल ये है असल में, क्या मतलब कि उनके दिल की कैफियत ये है कि दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाला, यानी अपनी तरफ से जो दीन के ऊपर अपनी राय फिट करता है ना बगैर दलील के, भाई जो दलील के साथ राय देता है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, जो कि कुरान की दलील, हदीस की दलील, या जो फुकहा हैं उनकी दलील लेकर के आगे दीन के बारे में बात करता है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज तो हर बंदा, हर बंदी है अपनी तरफ से जो है वो राय फिट कर रहा है। तो क्यों वो ये काम कर रहा होता है? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत उसके ऊपर गालिब आई हुई होती है। वो दीन को दुनिया के मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा होता है, दीन से दुनियावी फायदा खाली हासिल करना चाह रहा होता है। तो गर्रत हम हयात दुनिया व जक्किर भी। अब यहां से आज की क्लास वाली शुरू हो रही, क्योंकि या तो पिछली क्लास में पढ़ लिया था। व जक्किर भी, और नसीहत कीजिए उनको भी। किसके साथ नसीहत कीजिए? कुरान के साथ नसीहत कीजिए, क्योंकि हा जो जमीर है यहां पर, ये कुरान की तरफ पॉइंट कर रही है। नसीहत कर उनको कुरान से, ठीक है? यानी तुम दलील के साथ उनसे बात करो, नसीहत करो दलील के साथ उनको नसीहत करो, ठीक है? तुम भी ये हरकत ना शुरू कर देना कि बस बगैर दलील के जो है ना, वो बस मैं कह रहा हूं इस वजह से मेरी बात मान लो। भाई तुम्हारा बच्चा है तो ठीक है, बच्चों को ये बात तुम कह सकते हो अपने बच्चों को, क्योंकि अब्बू की बात बच्चों को माननी चाहिए। लेकिन किसी दूसरे शख्स को तो तुम इस तरह से नहीं कह सकते कि बस ये सही है, मैं कह रहा हूँ ये सही है, इस वजह से तुम कर लो ये बात। भाई दलील लेकर के आइए ना, कुछ दलील के साथ बात कीजिए, ठीक है? तो वो कुरान की दलील हो, या कुरान की तशरीहात में से कोई दलील हो, उसके साथ बात करो। तो आप नसीहत कीजिए उनको कुरान से, अंतुबसला नफ्सुम बिमा कसबत, ताकि, अन का तर्जुमा, ताकि उनका नफ्स जो है ना, वो यानी वो गिरफ्तार ना हो जाए, ठीक है, जो उन्होंने कमाया है उसके अंदर। यानी कोई नफ्स जो है वो अपने गुनाहों के जो नताइज होते हैं उसमें ना फंस जाए, ठीक है? क्या मतलब? कि भाई खैर ख्वाही करो इंसानों की, कि वो जो गुनाह कर रहे हैं तो गुनाह का तो वबाल आकर रहेगा। ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स गुनाह करे और उसके ऊपर मुसीबत ना आए, गुनाह की सजा ना आए उसके ऊपर, ठीक है? तो आप लोगों की खैर ख्वाही करें कि उनको नसीहत करें ताकि वो अपने गुनाहों के वबाल में फंस के ना रह जाए, बल्कि वो तौबा कर लें, निकल आए उसके अंदर से, ठीक है? उन्होंने लिखा कुछ के, अगर दीन सीखने के साथ साथ गुनाह भी नहीं छूट रहे, जैसे टीवी, म्यूजिक, झूठ, बेपर्दगी वगैरह, तो क्या ये भी दीन का खेल तमाशा बनाना कहलाएगा? अगर दीन सीखने के साथ साथ गुनाह नहीं छूट रहे हैं, यानी टीवी भी चल रही है, इधर उधर से कुरान भी सुन रहे हैं, म्यूजिक भी चल रही है, उधर आलमा कोर्स भी कर रहे हैं, और जो है वो झूठ भी चल रहा है, और साथ साथ हदीसें भी सीख रहे हैं, तजवीद भी सीख रहे हैं, और बेपर्दगी भी चल रही है, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या ये भी दीन का खेल तमाशा बनाना कहलाएगा? ठीक है, ये डिपेंड करता है। बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने, लेकिन इसका जवाब यह है कि ये डिपेंड करता है, ठीक है? कि अगर ये शख्स जो कि दीन भी सीख रहा है लेकिन साथ साथ गुनाह भी नहीं छोड़ रहा, अगर इसके दिल के अंदर नदामत है कि मैं गलत कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने हदीस में पढ़ा था कि मौसीकी जो है वो हराम है, क्योंकि जो है वो मैंने दर्स में सुना था कि टीवी जैसी चीज जो है ये तो ईमान की टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ ईमान, टीवी तो ये है, ईमान जो है वो फिर उसके बाद मर जाता है टीवी देख करके, ठीक है? तो है तो ये गलत काम, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि मुझे आदत लगी हुई है ना। देखिए, टीवी, म्यूजिक, झूठ, बेपर्दगी, ये गुनाह तो है, लेकिन जब इंसान तवील अरसे तक इनको करता है ना, तो वो इसकी आदत बन जाते हैं। अब वो इनके बगैर रहना उसके लिए आसान काम नहीं होता, ठीक है? तो इस वजह से सिर्फ इल्म हासिल हो जाने से फौरन छोड़ देना हर एक की बस की बात नहीं होती। कुछ लोग बड़े मजबूत कुव्वत इरादे के मालिक होते हैं, वो फौरन छोड़ देते हैं, या ये कि कुछ को ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो उस माहौल का फौरन हिस्सा बन जाते हैं और फौरन अपनी पिछली जिंदगी जो है वो तर्क कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हर बंदे का एक जैसा मामला नहीं होता। तो अब ये अगर इस एहसास के साथ कि ए अल्लाह मैं गलत कर रहा हूं, मुझे अब पता लग गया है कि ये हराम है, ये आपकी रजा के खिलाफ है, लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं छोड़ नहीं पा रही, लेकिन ए अल्लाह आप छुड़वा सकते हैं, आप मेरी मदद फरमा दीजिए, आप मेहरबानी फरमा दीजिए। ठीक है, तो अगर ऐसा इसका दिल का मामला है और अपने परवरदिगार से ये मदद मांग रही है, तो फिर ये दीन का खेल खेल तमाशा कहलाना बनाना नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये साथ साथ ये सोच रही है कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, दीन की मालूमात भी मैं हासिल कर लूंगी और साथ साथ ये भी चलता रहेगा, कुछ भी नहीं होता, ये सब चलता है साथ साथ, ठीक है ना, क्योंकि सभी करते हैं। ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा कि उसके ऊपर बिजली आई और वो जल के भस्म हो गई क्योंकि वो म्यूजिक सुन रही थी, तो इस वजह से कुछ भी नहीं होता। तो ये खेल तमाशा बनाना, ये दीन का खेल तमाशा बनाना होगा। ठीक है, तो अल्लाह आपको हाफिज और मुहाफिज, मुहाफिजा और हाफिजा दोनों की बनाए, दोनों बनाए दीन की, कुरान की। अच्छा, तो फरमाया कि लैस लहा मिन दूनिल्लाहि वलीयुन वला शफीउन, के अल्लाह के सिवा तो उसके लिए ना कोई वली है यानी हिमायती मददगार, और ना कोई शफात करने वाला या सिफारिश करने वाला। ठीक है, क्या मतलब कि जिन्होंने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ, जिन्होंने जिनको जो है वो दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाला हुआ, तो अब ये जो शख्स होता है ना, इसको कौन कौन मदद कर सकता है इसकी, अल्लाह ही ने करनी है ना। तो अल्लाह की मदद तो मशरूत है, अल्लाह ताला की मदद तो मशरूत है, कंडीशनल है। वो कंडीशनल क्या है, दीन को खेल तमाशा बनाना खत्म करो तब अल्लाह की मदद आएगी। ठीक है, शफाअत अल्लाह ताला अपने किसी बंदे के जरिए से भी करवा देंगे, लेकिन दीन को खेल तमाशा बनाने वालों की कोई सिफारिश नहीं करवाएंगे, कोई शफात का इंतजाम नहीं करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह की मदद के लिए, तो अल्लाह की विलायत के लिए, अल्लाह की तरफ से शफात के लिए, तो इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बगैर छोड़े तो गुमान करके बैठे हुए ना कि मैं अल्लाह की वलिया हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला की बड़ी जो है वो मदद मिलती है। भाई काफिर को भी खाना पीना मिलता है, काफिर को अल्लाह ताला की विलायत मिल गई क्योंकि अल्लाह ताला उसको खाना पीना दे रहे हैं, बड़े जबरदस्त जो है वो उसकी जिंदगी के अंदर फैसिलिटीज आई हुई हैं, बड़ा जबरदस्त गाड़ी चलाता है, बड़ी जो है वो बेहतरीन जॉब करता है, तो क्या मतलब वो अल्लाह ताला की रजा भी मिल गई उसको? नहीं, अल्लाह ताला का तो बोझ है उसके साथ। क्यों बोझ है? क्योंकि वो अल्लाह ताला की बताई हुई शर्त को पूरी नहीं कर रहा। उसी तरीके से हमारा भी मामला है, हम गुमान में बैठ के अपने आप को वली समझते रहे या पता नहीं क्या समझते रहे, शर्त अल्लाह ताला की पूरी नहीं कर रहे, तो ये बस एक खुशगुमानी है और ये एक गलत फहमी है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। हाँ, छोड़ नहीं पा रहे गुनाहों को, तो अल्लाह ताला तो छुड़वा सकते हैं ना, अल्लाह ताला से तौबा तो कर रहे हैं ना, माफी तो मांग रहे हैं ना, तो माफी मांगने वाला, तौबा करने वाला, तो एक दर्जे की विलायत उसको मिल जाती है। हालांकि वो गुनाह नहीं छोड़ा, लेकिन बहुत ही छोटे दर्जे की विलायत उसको भी मिल जाती है, ताइब को, तौबा करने वाले को, और फिर अल्लाह ताला मदद करके तौबा वो यानी छुड़वा भी देते हैं। ठीक है ना, वही बात है। वो रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि एक बंदा जो है वो मस्जिद में बैठा अल्लाह ताला से दुआ कराता है, अल्लाह मुझे अरब रुपए चाहिए, मुझे खरब रुपए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो बराबर में बैठा शख्स, ओए इतना ज्यादा मांग रहे हो, इतना ज्यादा मांग रहे हो, तो उसने कहा मैं तुमसे कोई थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ ना, तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है मुझे देना, तो अल्लाह के बारे में ऐसा तो गुमान हो ना, जिस तरह अल्लाह के लिए खरब रुपए देना मुश्किल नहीं है, उसी तरह अल्लाह ताला के लिए गुनाह छुड़वा देना मुश्किल काम है क्या? अल्लाह ताला के लिए मुसीबत से निकाल देना मुश्किल काम है क्या? लेकिन पता नहीं क्यों हम कहते हैं नहीं, अल्लाह ताला नहीं करवा सकता, अल्लाह ताला ये काम नहीं कर सकता, नाउज़ुबिल्लाह। तो अल्लाह ताला ही वली है, अल्लाह ताला ही शफी है, लेकिन शर्त के साथ। तो शर्त कम अज कम दर्जे की शर्त क्या है, तौबा करना। वह इन तआदिल कुल अदल ला युखज मिनहा, के और अगर बदले में दे सारे के सारे हदिये, सारे के सारे बदले, यानी कुल अदलिन, अदल का मतलब क्या होता है कि जैसा किसी ने किया है ना वैसे ही उसके साथ करना, जिसको कि हम अदल व इंसाफ भी कहते हैं, बराबरी बराबरी वाला मामला। ठीक है, जितना आपको कीमत मिली है उतना ही जो है वो आप आगे से माल दें उसको, ठीक है। जितना अच्छा किया उतना ही उसके साथ अच्छा करें, जितना बुरा किया उतना ही उसके साथ बुरा करें, तो इसको अदल कहते हैं ना। तो ये बदला, बदले, अदले का बदला, ठीक है। तो इन तादिल, अगर वो, अब ये वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं ना, ये अभी तो हमने नाउन की डेफिनेशन करी है कि अदल किस चीज को कहते हैं, अदल किस चीज का नाम है, ठीक है। अब इसकी वर्ब इस्तेमाल यहां पर हो रहा है, ठीक है, फेल इस्तेमाल हो रहा है। इन तादिल, अगर वो बदले में दे, कुल अदलिन, सारे के सारे बदले, ला युखज मिनहा, तो उससे कबूल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। यानी वो कोई दुनियावी कीमत दे करके अपने गुनाहों के वबाल से निकलना चाहे तो हम उस कीमत को कबूल ही नहीं करेंगे। भाई गुनाह के अजाब से निकलने के लिए तो तौबा चाहिए, ठीक है, दो आंसू, बल्कि आंसू भी नहीं चाहिए, वो कि मुहावरतन कह देते हैं, दो आंसू चाहिए उसके लिए तो, राइट, दिल की नदामत चाहिए उसके लिए तो, रोकड़ा कोई थोड़ी चाहिए उसके लिए, गुनाह के वबाल से निकलने के लिए पैसे कोई थोड़ी चाहिए, राइट। तो तुम कितना ही पैसा ला करके दे दो, गुनाह का वबाल तुम्हारे ऊपर से नहीं हटने वाला है। उलाइक अल्लज़ीना उबसलू बिमा कसब, के उलाइक अल्लज़ीना, वही लोग हैं जो के गिरफ्तार हुए हुए हैं जो उन्होंने कमाया है। कसब कहते हैं कमाना, मेहनत करके कमाना, ठीक है। तो ये गुनाह जो होती है ना, ये बंदा यानी जो गुनाह करता है वो बड़ी मेहनत करता है गुनाह करने के लिए, ये कसब है, कसब, जैसे कि लकड़ी काटना, ठीक है ना, मजदूरी करना, ठीक है। तो ये तो मेहनत मशक्कत के काम होते हैं ना, लकड़ी काटना, मजदूरी करना। उसी तरीके से गुनाह के लिए भी कसब का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यानी गुनाह करना जो है ये बंदा मेहनत करके करता है, ठीक है, नेकी करने के लिए मेहनत नहीं करनी, बल्कि तकवा के लिए। सही बात यह है कि तकवा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। तकवा तो बच का मतलब क्या है, बच बचा के चलते रहना बस, ठीक है, ना इधर घुसने की कोशिश करना, ना उधर घुसने की कोशिश करना, ना इधर टांग अड़ाने की कोशिश करना, ना उधर टांग अड़ाने की कोशिश करना, बल्कि सीधा सर झुका करके बस पीछे पीछे चलते रहना। तो ये ज्यादा आसान काम है या टांगे अड़ाना ज्यादा आसान काम है? गुनाह जो है ये टांगे अड़ा करके इंसान करता है, ठीक है, तो उसके अंदर तो फिर मुसीबत है ना। लेकिन शैतान धोखे में डालता है, शैतान का धोखा है ये कि गुनाह को जो है वो कहता है नहीं आसान काम है करने का, तो इस वजह से गुनाह कर लो। भाई आसान नहीं है वो, गुनाह करना मुश्किल काम है, आसान क्यों लग रहा है? शैतान ने धोखा दिया हुआ है, डिसेप्शन है शैतान की कि वो आसान है, हकीकत में वो आसान नहीं है, ठीक है। आसान काम तो तकवा है, बच बचा करके चलते रहना बस, ठीक है, ये आसान काम है। तो फरमाए कि उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं जो के गिरफ्तार हुए, ये तुबसला का लफ्ज अल्लाह ने ऊपर भी इस्तेमाल किया था ना, तो ये गिरफ्तारी, फंस जाना का के कॉन्सेप्ट को अल्लाह ताला यहाँ पे बयान फरमा रहा है, गुनाह के वबाल में फंस जाना, ठीक है। तो अब जो लोग गुनाह के वबाल में फंस गए हैं ना, लहुम शराब मिन हमीम, उनके लिए क्या बदला है, क्या उनके लिए सजा है, गरम पानी पीने के लिए, ठीक है। अब वो सुसुम पानी नहीं, जो हम जो है वो जब गला खराब हो जाता है थोड़ा सा सुसुम पानी हमारे वालदा मरहुमा कहा करती थी, नहीं, ये गरम पानी जहन्नुम वाला गरम पानी, ठीक है, जिसको के पीने से जो है वो कुछ भी नहीं बचता उसके बाद, फिर चल करके हर चीज राख हो जाती है। तो शराब मिन हमीम व अजाब अलीम, और दर्दनाक अजाब है उनके लिए जो कि अपने गुनाहों के वबाल के अंदर फंस चुके हैं, बिमा कानू यकफुरून, ठीक है, किस वजह से वो, कि वो जो रद्द किया करते थे, जो बद एतमादी किया करते थे रसूल के ऊपर, रसूल की बातों के ऊपर उनका इनकार किया करते थे। यकफुरून का मतलब क्या, कुफर करना, कुफर का मतलब क्या होता है, इनकार करना कि नहीं ऐसे नहीं होता जैसे तुम कह रहे हो, ये इनकार करना कहलाता है। ठीक है, तो जो इनकारी लोग होंगे कि नहीं कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, कुरान कह रहा है अजाब होता है, कहता है कुछ नहीं, ये कहता है कुछ नहीं होता, तुम क्या कर रहे हो, तुम कुरान का इनकार कर रहे हो कि गुनाह करने पे कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ये अमल सू युजा भी, जो भी गुनाह करेगा वो उसकी सजा पाएगा, तुम कहते हो कुछ नहीं होता। यू आर अ ब्लडी काफिर, तुम कुफर कर रहे हो कुरान का, और कुरान कहां से मिला, रसूल से मिला ना, तुम रसूल का इनकार कर रहे हो, तुम रसूल की रिसालत का इनकार कर रहे हो ये बात कह करके कि कुछ नहीं होता गुनाह करने से, क्या समझ रखा है तुमने। कुरान का इनकार करते हैं और बड़े अल्लाह के वली समझते हैं अपने आप को, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बिमा कानून यकफुरून, ये इनकार करने के ऊपर क्या है, शराबुम मिन हमीमिन व अजाबुन अलीम, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, ये कोई मौलवी साहब नहीं बोल रहे हैं, ये कोई पीर साहब नहीं बोल रहे हैं, ये अल्लाह का कलाम है जिसका दिया हम खाते हैं और जिसका ही सब कुछ हमारे पास है, और हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए ऐसा अजाब है, कह दीजिए कुल अनदउ मिन दूनिल्लाही, क्या मैं पुकारें, क्या हम पुकारें अल्लाह को छोड़ करके, ठीक है, हम अल्लाह को छोड़ करके किसी को पुकारें, मा ला यनफाउना, जो कि हमें नफा ना पहुंचा सके, वला यजुर्रुना, ना हमें नुकसान पहुंचा सके, राइट, क्या हम मदद के लिए ऐसे लोगों को पुकारें जो कि ना हमें नफा पहुंचा सकते हैं ना हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, व नुरद्दु अला आकाबिना, और क्या हम फिर जाएं, ये अ जो है ये हमजा इस्तिफामिया है, कुल के बाद जो है ना अनदउ, तो ये अ जो है ये एक्चुअली क्वेश्चन है, क्या हम पुकारें, नदउ का मतलब है हम पुकारें, तो वही अ जो है हमजा इस्तिफामिया व अनुरद्दु यहां पर भी अप्लाई हो रहा है, और क्या हम फिर जाएं अना आकाबिना, अपनी एड़ियों के ऊपर, अपनी एड़ियों अपने उल्टे पांव फिर जाएं, बादा इज हदान अल्लाह, बाद इसके कि अल्लाह ताला ने हम तक ये इल्म पहुंचा दिया, ये हिदायत का सीधे रास्ते का सिरात मुस्तकीम की पहचान हम तक पहुंचा दी, उसके बाद हम इससे मुंह मोड़ दें, राइट, यानी जो अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे को मदद के लिए पुकारे जो उसको नफा ना पहुंचा सके नुकसान ना पहुंचा सके, तो ये क्या है, ये अल्लाह से पीठ फेर लेना है, ये अल्लाह को अबैंडन कर देना है। ठीक है, तो मदद के लिए पुकारने का मतलब क्या, कि किसी शख्स को ऐसे मदद के लिए पुकारना कि समझना कि वही मेरी मदद करेगा, ठीक है, अल्लाह नहीं करेगा बल्कि वही शख्स मेरी मदद करेगा, यह है अल्लाह को छोड़ के किसी को मदद के लिए पुकारना, वरना अपने किसी दोस्त को मदद के लिए पुकारना या अपनी अम्मी को मदद, अम्मी प्लीज हेल्प मी, राइट, या बहन आप बराए मेहरबानी मेरी मदद कर दीजिए, ये नहीं है इसका मतलब, कि अगर किसी ने बहन को मदद के लिए पुकार लिया तो वो अल्लाह को अबैंडन कर दिया उसने, अल्लाह से मुंह मोड़ लिया उसने, नहीं, लेकिन अगर ये सोच करके बहन को मदद के लिए पुकारा कि बहन ही मदद करेगी अल्लाह तो मदद नहीं करता मेरी, तो अब तो बहन ही मदद करेगी, राइट, या ये सोचना कि नाउज बिल्ला अल्लाह तो मदद कर ही नहीं सकता इस वजह से मेरे अब्बा मेरी मदद करेंगे, या हमारे लिए इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी लोग हैं ना, आप भी माशाल्लाह मौलविया लोग हैं, तो आप तो इस तरह से नहीं कभी बहन को पुकारेंगी और अब्बू को पुकारेंगी ये सोचते हुए कि अल्लाह मेरी मदद नहीं कर सकता इस वजह से अब्बू मेरी मदद करेंगे, ये तो दूसरे लोगों के लिए जो इस तरह सोचते हैं यानी काफिर मुशरिक, हम तो ऐसे नहीं सोचते ना, तो क्या अभी ये आयत हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, क्या हम भी इसी तरह की एक और गलती नहीं करते, वो क्या, वो एक IQ टेस्ट हो गया आपके लिए, वो आप जवाब देंगे हम क्या करते हैं, क्योंकि हम ये तो नहीं करते कि अनतरू मिन दून लाही माला यनफाउना वला यदुरुना व नुरद्दु अला आकाबिना बादा इज़ हदाना अल्लाह, तो हम तो किसी को ऐसे नहीं पुकारते ये सोचते हुए कि बस यही मेरी मदद करेगा अल्लाह मेरी मदद नहीं कर सकता, या यही है मदद करने वाला, अल्लाह नहीं है मदद करने वाला। हम तो ऐसा नहीं सोचते ना, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हम भी इसी तरह की एक दूसरी गलती कर रहे होते हैं, तो ये हम पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि हम वो वाली गलती कर रहे होते हैं। क्या क्या है वो? हम कहते हैं कि हमारे पीर ही हमारी मदद करेंगे। नहीं, हम नहीं कहते, हम देवबंदी हैं। ये बरेली भी कहते होंगे इस तरीके से, बिदत ही कहते होंगे सर, हम तो नहीं कहते ये वाली बात, ठीक है, हम तो ये बात नहीं कहते, आप गलत कह रही हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह देवबंदी हैं भाई, हम नहीं कहते इस तरह की बात है कि पीर साहब हमारी मदद करेंगे। हम भी और ही वाली गलती करते हैं। क्या मतलब? ऊपर वाली गलती करते, कैसे ऊपर वाली गलती से मुराद क्या मतलब? हम क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह दीन के काम में मदद करेंगे, ये दीनदार कहते हैं, ये तो गलत बात नहीं है, अल्लाह ताला दीन के काम में मदद करते हैं। देखे, हम जो है ना वो ये गलती करते हैं कि हम गुनाह करते हैं और उनके ऊपर नादिम शर्मिंदा नहीं होते, ठीक है। तो जब हम गुनाह करते हैं और तौबा भी नहीं करते ना, तो दरअसल हम अल्लाह की मदद से महरूम हो जाते हैं। जब हम गुनाह करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर तौबा नहीं कर रहे होते हैं, तो हम अल्लाह की मदद से महरूम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब हम अल्लाह की मदद से महरूम हो जाते हैं ना, क्यों महरूम हो जाता है? इसलिए कि थोड़ी देर पहले हमने आपको ये बात बताई थी, बस थोड़ी, ऊपर वाली आयत में ये बात बताई थी कि अल्लाह की मदद मशरूत है, अल्लाह की मदद कंडीशनल है। किस चीज के साथ? तौबा के साथ, तकवा के साथ। और अगर तकवा नहीं बहुत कर पा रहे हो, तो कम से कम तौबा के साथ अल्लाह की मदद मशरूत है, उसके बगैर अल्लाह की मदद नहीं है, ठीक है। उसके बगैर जो कुछ मिल रहा है ना, वो ऐसी समझे जैसे काफिर को मिल रहा है, उसी तरह हमें भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अल्लाह की जो मदद है, ये तो तकवा के साथ या कम से कम तौबा के साथ मशरूत होता है। हम नहीं करते, हम नहीं कर रहे तौबा, ठीक है। तो अब जो है ना, जब हम तौबा नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर जब हम किसी को मदद के लिए पुकार रहे होते हैं ना, तो ये ऐसे ही है कि जैसे मुझे अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं अल्लाह की तो मान नहीं रहा, क्योंकि मैं तौबा तो कर नहीं रही, ठीक है भाई। अल्लाह की मदद की जरूरत अगर मुझे है, तो वो तो तौबा करके मिलेगी ना। लेकिन जब मैं तौबा नहीं कर रही, तो इसका खालिसतन यही मतलब है कि मुझे अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं है। मेरा काम जो है वो दूसरों की मदद से बन जाएगा, मेरा काम दूसरों की मदद से बन जाएगा, ठीक है। मुझे तौबा वोबा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तौबा जो है ये तो अल्लाह की मदद के लिए जरूरत पड़ती है ना। इसकी तौबा तो अल्लाह की मदद के लिए शर्त है, वो मैंने करनी नहीं है, यानी वो मुझे शर्त पूरी करनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे अब दूसरों से मदद हासिल करनी है। भाई मिसाल के तौर पर कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि भाई आप जो है ना वो बड़े फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में मुब्तला हैं, आपके माली हालात बड़े खराब हैं, तो मैं आपको जो है ना वो पैसे दे सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि आप जो है ना वो फलाना काम करें, आप मेरी शर्त पूरी कर लें, वो वाला काम कर दें, तब मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। तो अब आप ये कहें कि मुझे तो ये शर्त पूरी नहीं करनी, मुझे तो ये शर्त पूरी नहीं करनी जो आप मुझे कह रही है ना ये काम करने के लिए, तो मुझे तो ये काम नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसी दूसरे शख्स के पास जाएं और उससे कहें कि भाई आप मुझे पैसा दे दें, मेरा मसला अटका हुआ है, तो आप मुझे पैसे दे दें ताकि मेरा ये मसला हल हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक शख्स आपके पास, एक औरत आई आपके पास और उसने कहा कि भाई मैं आपको पैसा देने के लिए तैयार हूं, बस आप ये एक शर्त पूरी कर दें, आप कहें कि नहीं यार ये शर्त मैंने पूरी नहीं करनी है, अब आप किसी दूसरे शख्स के पास चली जाएं और उससे कहें कि भाई आप मुझे पैसा दे दें, तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है ना आप इस शख्स से मदद नहीं मांग रही हैं, क्योंकि इस शख्स ने तो लगा दी शर्त, आप उस शर्त को पूरा नहीं करना चाहती, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप उस शख्स से मदद नहीं चाहती हैं, बल्कि आप एक दूसरे शख्स से मदद चाहती हैं जो कि ये शर्त नहीं लगा रहा, जिसको आप पूरा नहीं करना चाहती वो शर्त वो नहीं लगा रहा, ठीक है ना। तो जब आप किसी दूसरे शख्स से बात करेंगी, अब इसका मतलब क्या है कि भाई आप पहले शख्स से मदद नहीं हासिल करना चाहती हैं, आप पहले शख्स की शर्त को नहीं पूरा करना चाहती, इसका मतलब आप उसकी मदद ना नहीं हासिल करना चाहती। क्या इसके अलावा कोई दूसरा मतलब है इसका? यही मामला अल्लाह ताला के साथ और हमारा भी यही मामला है, एग्जैक्टली यही मामला है कि हम अल्लाह की शर्त को पूरा नहीं करना चाहते, अब हम किसी भी दूसरे शख्स से मदद मांग रहे होते हैं, बेशक हम जुबान से ना बोले कि मुझे अल्लाह की मदद चाहिए, लेकिन हमारा यही मतलब होता है कि नहीं मुझे अल्लाह की मदद नहीं चाहिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की शर्त मैं पूरे करने के लिए तैयार नहीं हूं। तो इसका यही मतलब है कि आई डोंट वॉन्ट हेल्प फ्रॉम अल्लाह, मुझे अल्लाह की मदद नहीं चाहिए, मेरा काम कोई और कर देगा, मेरा मसला कहीं और सहल हो जाएगा। ठीक है, ये काम हम सब करते हैं और अहले देवबंद भी करते हैं, यानी हम जो हमारे अकाबिर की बात नहीं कर रहा मैं, हम जो अपने आप को सो कॉल्ड देवबंदी और अपने आप को जो है वो कहते हैं ना हम बिदतें नहीं करते, हम शिर्क नहीं करते, हम तो अहले बिदत नहीं है, लेकिन ये वाला काम हम भी कर रहे होते हैं क्योंकि हम तौबा नहीं कर रहे होते। तौबा कर लें अगर हम, तो हम अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होने वालों में हो जाएंगे, लेकिन नहीं करना तौबा तो इसका मतलब ये है कि आपने अल्लाह को साइड पे कर दिया है, अब आप जिससे भी मदद मांग रहे हैं वो अल्लाह को छोड़ के उससे मदद मांग रहे हैं। क्या समझ में आई भाई? ठीक है, बताए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला लगता है लेकिन बहुत ही सादा सी बात है और हम ये सब खुद कर रहे होते हैं ना। इन्होंने क्या लिखा, अगर हमको मालूम है ये गुनाह है लेकिन फिर भी हम ये अल्लाह से बोल रहे कि अल्लाह मैं गलती तो कर रही लेकिन मेरे यही सहूलत है, इसलिए मैं गलत होने के बावजूद मेरा ये काम कर दें और मुझे माफ कर दें इस गलती पर, मेरी यही सहूलत है। गुनाह को सहूलत समझना तो बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है। हाँ ये बोल दें अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुझसे गुनाह छूट नहीं रहा है लेकिन मैं उसको गुनाह मानती हूँ, मैं अपनी गलती को तस्लीम करती हूँ, मुझसे गुनाह नहीं छूट रहा है, लेकिन आप मेरी फिर भी मदद फरमा दीजिए, आप तो रहीम हैं, आप तो करीम हैं, ए अल्लाह गुनाहगारों के भी तो आप ही रब हैं, हम गुनाहगार आपको छोड़ करके कहाँ जाएं मदद मांगने के लिए, ठीक है, हम अपने नफ्स से मजबूर हैं, अपनी आदतों से मजबूर हैं, हम कमजोर हैं, गुनाह नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन ए अल्लाह मदद तो आप ही ने करनी है, आपके सिवा कोई नहीं हमारी मदद कर सकता, ठीक है। तो भाई ये तो तौबा हो गई ना, नादिम तो है ना आप गुनाह के ऊपर, ठीक है, तो ये तो जीत, इसी को तो तौबा कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, इसी को तो तौबा कहते हैं, नदमु तौबा, तो ठीक है। तो गुनाहों के साथ भी अल्लाह ताला से मदद मांगी जा सकती है, लेकिन इस एहसास के साथ, इस एहसास के साथ, उस एहसास के साथ नहीं कि कुछ नहीं होता और ये तो बस मेरा हक बन, ये तो मेरा हक बनता है गुनाह करना, अब अल्लाह का, अल्लाह की जिम्मेदारी बनती है मेरी मदद करना, मेरा हक बनता है गुनाह करना, अल्लाह की जिम्मेदारी बनती है मेरा मेरी मदद करना, इस तरह नहीं, ठीक है। अच्छा ये सहूलत का लफ्ज जो है ना, बस ये एक गड़बड़ आपने कर दी है इसके अंदर, इस सहूलत के लफ्ज को निकालो, ठीक है, क्योंकि गुना सहूलत नहीं है, बस ये आप असल में उर्दू का मसला है, आप शायद अपने आप को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, सहूलत का लफ्ज आपने गलत इस्तेमाल कर लिया। एनीवेज तो वापस इस पर आते हैं कि नदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यदुरुना वनुरद्दु अला आकाबिना बाद इज़ हदाना अल्लाह कल्लज़ी, जैसे कि वो इस्तहवत हो शैतान फिल अर्द हैराना, कि जैसे कि वो शख्स के जिसको के शैतान ने रास्ता भुला दिया हो, इस्तहवत हो अशैतान, शैतान ने उसको रास्ता भुला दिया हो जमीन के अंदर, और अब वो हैरान परेशान खड़ा हुआ है, अब मैं किधर जाऊं, राइट? तो ये शख्स जो होता है ना, जो कि अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे को मदद के लिए पुकारता है, तो इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे कि रास्ते में खड़ा हुआ है हैरान परेशान, लहू असहाबु यदउनहु इलल हुदा तेना, कि उसके लिए उसके रफीक बुलाते हैं उसको रास्ते की तरफ कि चला आ हमारे पास। ये हम इंशाल्लाह तफसीर के अंदर इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि यार अभी आगे की मुताला नहीं कर पाया था कि यहाँ पे कौन मुराद है, असहाब से किस कौन से वाले असहाब मुराद है, वो अभी मुताला नहीं किया था इस वजह से। खैर मुताला तो किसी और का भी नहीं किया था, लेकिन वो बराबर पहले पिछले मुताले की बुनियाद पर चल रहा था मामला, अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे उसको। बहरहाल एक इस आयत को बस मुकम्मल कर लेते हैं तर्जुमे के एतबार से, कि कुल कह दीजिए उनसे कि इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, कि अल्लाह की तरफ से जो हिदायत आई है ना, कह दीजिए इन लोगों को कि वही हिदायत है, ठीक है? ये नहीं कि शैतान की तरफ से जो तुम्हें रास्ता बताया जा रहा है, या फिर वही है ना कि शैतान के जो आप असहाब हैं वो अगर किसी तरफ बुला रहे हैं, वो हिदायत नहीं है। हिदायत तो वो है जो कि रसूल की तरफ से आ रही हो, या रसूल के वरसा उलमा और मशाइख की तरफ से आ रही हो, वो हिदायत। क्या मतलब? आजकल तो बहुत बड़ी मुसीबत आई हुई है ना, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इंसान, ऐसे पढ़े लिखे नौजवान मर्द, राइट, जो कि बड़ाहिर बड़े दीनदार, भी लंबी लंबी दाढ़ी भी रखी हुई है, और नमाजें भी जबरदस्त किस्म की पढ़ते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो हिदायत कहाँ से ले रहे हैं? सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से फलाना एंकर ये कह रहा था, फलानी एंकर ये कह रही थी, वो जितनी जबरदस्त बात कर रहा था उस चैनल के ऊपर बैठ करके, वो कितना जबरदस्त एनालिसिस कर रहा था फलाने जो है वो टॉक शो में बैठ करके। तो ये आप कहां से हिदायत ले रहे हैं, कहां से चीजों की समझ आप हासिल कर रहे हैं? इन एंकर से, इन सोशल मीडिया आउटलेट से, इन अखबारी जो है वो बयानात से आप हिदायत हासिल कर रहे हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है? और बड़े दीनदार बनते हैं, मस्जिद के बगैर आपकी नमाज नहीं होती है? और लंबी लंबी दाढ़ी रखी हुई है, और पता नहीं और भी क्या क्या दीन के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन हिदायत आप किधर से ले रहे हैं? कुरान से और हदीस से हिदायत नहीं ले रहे तुम सोशल मीडिया के एंकर से हिदायत ले रहे हो। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को, क्या हो गया तुम्हारी अकल को? ठीक है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत क्या सोशल मीडिया के जरिए से हमारे पास आती है? इन रोएबजा के जरिए से हमारे पास हिदायत आती है? रोएबजा का लफ्ज सुना है ना, अब तो बड़ी हदीस भी बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है, और अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई कयामत के करीब जो फितने आएंगे उनमें से एक फितना ये होगा कि रोएबजा बोलेंगे, यानी जिनकी कोई वक्त नहीं है, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, वो बड़े बड़े मामलों के अंदर एनालिसिस करेंगे, राय दिया करेंगे वो लोग, और हम उनसे जो है वो हालात हाजरा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको तवज्जो दे रहे हैं। हदीस की रोशनी में हम हालात हाजरा को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या क्या तमाशे लगा के रखे हुए दीन के साथ। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हमको हुक्म हुआ है कि परवरदिगार के ताबे रहे। तो जो हिदायत परवरदिगार ने पसंद फरमाई है जिस रास्ते को, यानी नबियों के रास्ते को, शयातीन के रास्ते से जो अल्लाह ही हिदायत भेजते हैं, शयातीन वाली हिदायत भी अल्लाह ही भेजते हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की गजब का रास्ता है, अल्लाह ताला वो हमारे तरफ भेजते हैं तो आजमाइश के लिए भेजते हैं कि ये कौन से वाले रास्ते की हिदायत को तवज्जो से सुनता है, क्या रसूलों की तरफ से आई हुई हिदायत को तवज्जो से सुनता है, या शयातीन की तरफ से आई हुई हिदायत को तवज्जो से सुनता है। ये आजमाइश है हमारे लिए अल्लाह की तरफ से। अब इस आजमाइश में कामयाबी क्या, कि हमने इन वेबजा, इन सोशल मीडिया आउटलेट्स की तरफ तवज्जो नहीं देनी है, बल्कि हमने कुरान और हदीस की तरफ तवज्जो देनी है, और जो उसको समझाने वाले मशायख हमने उनकी तरफ तवज्जो देनी है, राइट? तो उमिरना, हमें हुक्म हुआ है, लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, अपने रब की रजा की इत्तबा करना, ये हुक्म है हमारे लिए, ठीक है? अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, अगली क्लास के अंदर बात नहीं कर रहा, तो पढ़ लेंगे फिर आगे खुलासा तफसीर और मारफ व मसाइल, ठीक है जी? क्या कह रहे हैं आप? इनका मतलब ये तो नहीं है कि गुनाह के बारे में अल्लाह को बताना कि मेरे लिए ये इस वक्त ठीक है, सहूलत से मुराद, अगर ये मुराद है तो बहुत गलत मुराद है ना, कि ये मेरे लिए ठीक है। अल्लाह ताला को तो पता नहीं था इस बात का कि गुनाह मेरे बंदे के लिए ठीक नहीं ठीक होता है, इनको पता है कि ये गुनाह मेरे लिए ठीक है। भाई इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें मत किया करें, ठीक है ना? अल्लाह ताला की गैरत को ललकारने की कोशिश ना किया करें उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करके, ठीक है? तो ये सहूलत के लफ्ज़ को बिल्कुल निकाल दें अपनी बात से, बाकी ठीक है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह गुनाह नहीं छोड़ पा रही हूँ, मैं नहीं छोड़ती, आप छोड़वा दीजिए बस, लेकिन साथ साथ मुझे इस मदद की भी जरूरत है, और आप ही तो मदद कर सकते हैं, वो भी आप कर दीजिए, ठीक है? इस तरह से अल्लाह ताला से करें ना बात, इसमें किसने पाबंदी लगाई है, ठीक है? अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिर दुआना अस्सलाम।